शाम की वक्त प्रियल जल्दी में थी और कई सारे पेपर्स लेकर अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी वो लड़खड़ा गई और उसके पास मौजूद सारे पेपर्स नीचे गिर गए। इतने में ही निक ने अपनी गाड़ी टेनिस सेंटर के अंदर पार्क की। प्रियल पेपर्स उठाने लगी और निक उसे देखकर उसकी तरफ आने लगा। निक उसके पास आकर बोला, अरे मिस शर्मा, जल्दी जल्दी उठाइए, किसी ने देख लिया तो पनिशमेंट मिल जाएगी। यहाँ आने से पहले उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो उदास सा था, मगर प्रियल को देखते ही जैसे उसके सारे शरीर में एनर्जी वापस लौट आई। प्रियल पेपर्स को उठाते हुए बोली, पर मैंने जानबूझकर नहीं गिराए सर, मुझे रूम में जाने की जल्दी थी और ये गिर गए। तुम नाजुक सी, तभी निक ने खुद को रोका। नहीं, ये कहना गलत है, तुम्हारा वजन काफी ज्यादा है तो मैं तुम्हें नाजुक सा नहीं कह सकता। प्रियल हंसने लगी, प्लीज सर, अब मुझ पर टॉन्ट मत मारिए, देखने से लगता नहीं मैं भारी हूँ, पर पता नहीं कैसे मेरा वजन इतना है। तभी कोच की नज़र प्रियल पर पड़ी और वो उसके पास आकर बोला, हे, डोंट यू नो अबाउट क्लिनलीनेस। प्रियल की सांस हलक में आ गई। नो सर, आई डिड नॉट डू डैट जानबूझकर। ओ रियली, कोच ने सख्त आवाज में कहा, मगर तुम्हें सजा तो मिलेगी। फिर उसने निक की तरफ देखा। निक ओहदे में सबसे बड़ा था तो उसके होने के कारण एक बार उसने निक की तरफ देखा। निक ने अपने हाथ को स्वागत के अंदाज में लहराया और कहा, जरूर, अगर गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। प्रियल तिरछी आंखों से निक को देखने लगी। कोच ने सख्त आवाज में कहा, ओके देन, प्रेजेंट हियर एट शार्प 4 o'clock एंड कम्प्लीट एटलीस्ट 5 राउंड ऑफ वॉल ग्राउंड रैपिडली। और ये बोलकर कोच चला गया। निक कोच के जाते ही हंसने लगा, बोला था ना मैंने तुम्हें सजा मिलेगी। प्रियल रोने वाला मुंह बनाकर बोली, पर आप रोक सकते थे, भला इसमें मेरी क्या गलती थी, पेपर खुद से नीचे गिर गए तो पेपर्स को भेज देना राउंड लगाने, निक ने कहा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। थोड़ा दूर जाने के बाद वो बोला, सुबह आ जाना, अगर नहीं आई तो कोच और कड़ी सजा दे देगा। प्रियल ने उसके जाने के बाद पीछे गुस्से में कहा, 4 बजे जैसे खुद कोच आएगा मुझे देखने। उसने आखिर में जीभ बाहर निकाली। वो दोबारा पेपर उठाने लगी, जिसे देखो पनिशमेंट देने में रेडी रहता है। दूसरे दिन प्रियल सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी। ठंड बहुत ज्यादा थी और वो धीरे धीरे दौड़कर चक्कर पूरे करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी जो दूर एक पाइप के साथ पीठ लगाकर खड़ा था। उसने वहां से अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, हे मिस शर्मा, ऐसे रनिंग करोगी तो 2 दिन लग जाएंगे, जान नहीं है क्या शरीर में। निक सर, प्रियल दौड़ते दौड़ते रुक गई और उसके चेहरे पर चमक आ गई। निक उसके पास आया और बोला, चलो आओ मेरे साथ रेस लगाते हैं, आज कपड़ों का भी बहाना नहीं, देखते हैं कौन जीतता है। ये गलत बात है, प्रियल बोली, मगर निक दौड़ने लगा। निक दौड़ने लगा तो प्रियल भी दौड़ने लगी। उसने दौड़ते हुए कहा, आज तो मैं ही जीतूंगी, सपने देखने का वक्त 4 बजे से पहले होता है। निक ने टॉन्ट मारा, और आज मैं चल नहीं रहा हूँ। झूठ मत बोलिए, उस दिन भी आप दौड़ ही रहे थे, प्रियल रेस में काफी पीछे रह गई। अरे रुकिए ना सर, मैं भी हूँ, रहम करो मुझ पर। रनिंग कंप्लीट हुई और निक रुकता हुआ बोला, लीजिए मिस शर्मा, आपके तो 5 साउंड कंप्लीट हो गए। और वो बोलता बोलता रुक गया। प्रियल घुटनों पर हाथ रखकर सांसें लेने लगी। और क्या, उसने पूछा, और आपका थोड़ा वजन भी कम हो गया होगा। प्रियल धीरे से खुद से बोली, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे परेशान करने का ये। निक जोर से बोला, मैं सब सुन रहा हूँ मिस शर्मा। हाँ हाँ, आपके पास 2 कान है तो सब सुनेगा ही, प्रियल ने टोन कैच करते हुए कहा। तो आपको क्या लगता है नहीं सुनना चाहिए, इतना जोर जोर से चिल्ला कर बोलोगी तो बहरे को भी सुन जाएगा। हाँ, जैसे वो तो मेरी बात सुनने के लिए ही यहाँ मेरे पास खड़ा होगा, मानो मेरा हस्बैंड हो, प्रियल ने ये कहा तो निक उसे घूर कर देखने लगा। प्रियल ने निक की तरफ देखा और फिर चेहरा नीचे करके वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद निक बोला, ये लड़की कुछ भी कह देती है। निक चीन के रूम में पहुंचा तो उसे रॉन दिखाई दिया, जो अभी अभी आया था। उसे देखते ही निक ने उससे पूछा, हो गई प्रिपरेशन? हाँ, कल लिटिल चाइल्ड ऑफ नीज में डोनेशन सेरेमनी है इवनिंग तक, उससे पहले पावती आंटी की डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि पर कंडोलेंस मीटिंग, शोक सभा। रॉन ने इतना ही कहा था कि उसके शब्द अपने आप रुक गए। वहीं निक ये सुनकर उदास हो गया। हाँ, निक ने कहा। निक इससे पहले आगे कुछ बोल पाता उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये देखकर रॉन उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। रॉन बोला, किसी की भी लाइफ परमानेंट नहीं होती है भाई, एक दिन सबको जाना होता है, किसी को पहले तो किसी को बाद में, सबके साथ यही होगा। तो मैं ही पहले चला जाता, निक ने रोते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। चुप कर, क्या बकवास कर रहा है। निक को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने उसे डांट लगाई। पता है रॉन, निक बोला, मैं मॉम को बहुत मिस करता हूँ, उन्होंने जैसे कहा था मैंने हमेशा वैसे ही किया, अपने डैड के बारे में भी नहीं पूछा उनसे और ना ही कभी जानना चाहता हूँ। मुझे आज तक नहीं पता मेरा बाप कौन है, बट वो फिर भी मुझे अकेले छोड़कर चली गई, आखिर क्यों यार। रॉन ने उसकी पीठ थपथपाई और फिर अलग होकर टेबल से कुछ कार्ड उठाकर लाया। अब बड़ों जैसे बात मत कर, ये ले कार्ड्स, यहाँ मैंने बांट दिए हैं, तुम इंस्टीट्यूट में दे देना सबको। दत्ता भी आ रहा है अपने पार्टनर के साथ, उसे भी दे देना एक, मेरा आज वहां जाना नहीं होगा तो तुम संभाल लेना। संभाल लूंगा, निक ने कहा और कार्ड पकड़ लिए। दत्ता को कार्ड देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, फॉर्मेलिटी है तो देना ही पड़ेगा, बाकी वो ना आए तो ही अच्छा है। इंस्टीट्यूट में अथॉरिटी की मीटिंग हो रही थी, सब वहां मौजूद थे, मिस्टर दत्ता भी। निक उनके ठीक सामने वाली कुर्सी के ऊपर बैठा था, दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख रहे थे। मिस्टर जॉनसन ठीक उनके बगल में थे। मिस्टर पॉटर खड़े हुए बोले, मीटिंग की शुरुआत में मिस्टर के जॉनसन के इंट्रोडक्शन के साथ करूंगा, ये हमारे इंस्टीट्यूट के नए मेंबर और पार्टनर दोनों ही हैं, बिलियनर बिजनेसमैन ऑफ लंदन। अपने बिजनेस को इन्होंने खुद अपने स्ट्रगल पर खड़ा किया, इनका नाम कई सारी मैगजीनों और टीवी के इंटरव्यू में रहता है, उम्मीद करूंगा आपको इनसे काम करके खुशी मिलेगी। मिस्टर पॉटर के शब्दों के खत्म होते ही अथॉरिटी रूम में तालियां बज उठी। मिस्टर जॉनसन खड़े हुए और तालियों का स्वागत किया। इसके बाद मीटिंग शुरू हुई और कुछ नॉर्मल डिस्कशन हुआ। मीटिंग के खत्म होने के बाद मिस्टर पॉटर दोबारा खड़े हुए और मीटिंग खत्म करते हुए बोले, आशा करता हूँ कि हम सब बिना किसी समस्या के साथ काम करेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कल कैप्टन निक की माँ की पुण्यतिथि है तो उनके लिए एक शोक सभा है। इसके बाद डोनेशन इकट्ठा करने का भी प्रोग्राम रखा गया है जो अनाथ बच्चों के लिए होगी। जगह और बाकी जानकारी कार्ड पर लिखी हुई है जो आप सबको भेज दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप सब कल वहां जरूर आएंगे। इसी के साथ मीटिंग खत्म हो गई और सब कमरा छोड़कर चले गए, लेकिन मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन वो अभी भी वहां पर बैठे हुए थे। मिस्टर दत्ता मुस्कुराए और अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अगले साल माँ बेटे की डेथ एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे हम। हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ, बस आप तैयार रहना, मिस्टर जॉनसन बोले। मेरी तरफ से मैंने तैयार होने में कोई कमी नहीं रखी है, मिस्टर दत्ता ने कहा। फिर उन्होंने पूछा, वैसे प्लान क्या है आपका? कंट्री साइड में एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है, मिस्टर जॉनसन बताते हुए बोले। स्कूल कॉलेज के बच्चे वगैरह पिकनिक के लिए आते हैं, वहाँ छोटा सा कोई पार्क है पास में, वहाँ पास में दो तीन छोटे मोटे बम ब्लास्ट करवा देंगे। निक जाएगा हेल्प के लिए क्योंकि करीब है वो जगह, उसके जाने के बाद में जहाँ वो होगा वहाँ पर बिग बम ब्लास्ट होगा और फिर गेम ओवर। प्लान तो काफी अच्छा है आपका, पर बच्चे बच्चे तो नहीं होंगे वहाँ पर?
बच्चे होंगे तभी तो निक जाएगा, वरना टीम में और मैं बस भी हूँ, वो इस घटना का जायजा लेने के लिए चले जाएंगे। सब हालातों को देखते हुए मैंने ये जगह चुनी है, निक बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए वही वहां जाएगा और अपनी जान गवा बैठेगा। हम कल निक की माँ की शांति के लिए रखी प्रार्थना सभा में चले जाएंगे, इससे उनके दोस्तों में से कोई हम पर शक नहीं करेगा। मिस्टर जॉनसन मुस्कुराए, हाँ जरूर। तभी निक मीटिंग रूम में आया, उसके आते ही दोनों चुप हो गए। निक के हाथ में उन्हें प्रार्थना सभा बुलाने के लिए कार्ड थे। निक उनके पास आया और बोला, हेलो मिस्टर दत्ता, हेलो मिस्टर जॉनसन, प्लीज डू कम इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज यू। हाँ जरूर आएंगे कैप्टन निक, मिस्टर दत्ता ने जल्दी से कार्ड पकड़ा और कहा, भगवान आपकी माँ की आत्मा को खुश रखे, मुझे उम्मीद नहीं थी आप, खैर क्या कह सकते हैं। निक ने इतना ही कहा और फिर वहां से चला गया। मिस्टर दत्ता उसके जाने के बाद बोले, ये लड़का बाज नहीं आएगा, देखना कल इसकी माँ की आत्मा सच में खुश हो जाएगी। बेटा जो पास आ रहा है काफी हैंडसम है, ये लड़का है ना? मिस्टर जॉनसन दरवाजे की तरफ देख रहे थे। क्या फायदा, मिस्टर दत्ता बोले, अभी तक सिंगल है बेचारा, अपनी गर्लफ्रेंड के सदमे में अभी तक अकेले घूम रहा है, मैं इसकी जगह होता तो कब का आगे बढ़ चुका होता। मिस्टर जॉनसन हैरान हुए, सदमे में? मुझे तो सदमे में नहीं दिख रहा, ये अच्छा खासा लग रहा था, आप अभी अभी आए हैं ना इसलिए। मिस्टर दत्ता ने अपने हाथ में मौजूद कार्ड को देखा और फिर उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, चलो चलते हैं यहाँ से, अब कल शाम की भी तैयारियां करनी है। मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन दोनों मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। बाहर वे दोनों जा रहे थे तभी अचानक सामने से प्रिया लाते हुए दिखी। निक वहीं पास था। निक ने जैसे ही देखा दोनों एक दूसरे के आमने सामने जा रहे हैं, वो अपनी जगह से दौड़ा और तुरंत प्रियल के पास पहुंचा। प्रियल के पास पहुंचते ही उसने उसे खींचा और पास के एक रूम में ले गया। वहां उसने प्रियल के मुंह पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए कहा, चिल्लाना मत प्लीज, मैं हूं। फिर उसने अपना हाथ हटाया। प्रियल निक की तरह ही धीमी आवाज में बोली, डरा दिया आपने तो मुझे। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी गहरी सांस ली। निक पीछे हटा और नॉर्मल आवाज में कहा, अरे सामने से तुम्हारे डैड आ रहे थे तो मैंने तुम्हें यहाँ खींच लिया, तुम्हारे पापा देख लेते तो अलग पंगा पड़ जाता, चोट तो नहीं लगी ना तुम? उसने पूछा। प्रियल गुस्से में आई और बोली, वो मेरे डैड नहीं है और ना ही कभी उनकी जगह ले सकते हैं। मतलब निक को प्रियल का गुस्सा देखकर कोई बात नहीं सूझ रही थी। मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, वो छोड़ो ना, बताओ चोट तो नहीं लगी? मुझे नहीं बताना, प्रियल ने गुस्से में मुंह बनाया और वहां से जाने लगी। निक उसे पीछे से पकड़ा और खींचकर अपने करीब कर लिया। प्रियल उसके सीने से टकराई और पूरी तरह उस पर ढेर हो गई। निक धीमी आवाज में बोला, मत जाओ यार, अभी भी सब वहीं पर है, तुम खतरे में आ जाओगी। मैं नहीं आऊंगी, प्रियल ने एक एक शब्द को रोकते हुए कहा। वो पूरी तरह से खोसी गई थी। मुझे जाना है, उसने जाने की कोशिश की। कितनी जिद्दी हो तुम, निक ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे जाने से रोक लिया। प्रियल ने मन में सोचा, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, इससे पहले ये तब इतनी जोर से धड़का था जब मैंने इन्हें देखा था, कहीं इन्होंने सुन लिया तो। प्रियल ने खुद से पूछा, क्या जरूरत है इतना करीब आने की? निक, वही निक ने सोचते हुए कहा, ये आज तुम्हारा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है, ये धड़कन मैं तो जैसे इसलिए भूल ही गया था। तभी निक होश में आया और उसने प्रियल को आराम से पीछे करते हुए पूछा, बोलो कुछ लगी तो नहीं? ओके आई एम सॉरी यार, मुझे उसे तुम्हारा डैड नहीं कहना चाहिए था। हाँ वो डैड नहीं है मेरे, उसने मुंह बनाया, फिर बोलने लगी, मेरे डैड तो निशांची है, है ना? प्रियल के चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन बन गए। निक को सब पता था और ये बात उसके लिए हैरानी वाली बात नहीं थी। निक उसके अजीब से चेहरे को देखकर बोला, ऐसे एक्सप्रेशंस मत दो, रोहन ने बताया मुझे, इसलिए मुझे पता था। प्रियल की आंखों से आंसू आ गए। अपने पिता का नाम आने की वजह से वो उन्हें याद करने लगी थी। निक को ये देखकर अजीब लगा। प्लीज रो मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम यहाँ पर हो मैं मिस्टर दत्ता को कभी पता नहीं चलने दूंगा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हमेशा बचा कर रखूंगा उनसे। निक का मन प्रियल को फिर से दिल से लगाने को कर रहा था, मगर अपनी बढ़ती दिल की धड़कन के कारण उसने ऐसा नहीं किया। थैंक यू, प्रियल ने अपने चेहरे पर मुस्कान दी। निक हंसने लगा, पर हाँ अगर मैं ही न रहा तो? निक अपनी बात पूरी करता उससे पहले प्रियल ने उसके मुठों पर हाथ रख दिया। निक आगे बोला मगर अपने शब्दों को रोकते हुए, अपना ध्यान खुद रखना। प्रियल ने जोर से होंठ दबा दिए, ऐसे नहीं बोलते। प्रियल ने जब निक के मुंह पर अपना हाथ रखा तो उसे एली की याद आ गई, वो भी ऐसे ही उसके मुंह पर हाथ रख देती थी तब जब वो कभी गुस्से में होता था या मजाक में मरने की बात करता था। निक प्रियल की आंखों में देखने लगा और उसके मुंह से निकला, एली। प्रियल निक के चेहरे को देखने लगी, क्या एली, कौन एली? उसने पूछा, दूर रहो मुझसे, अचानक निक बोला और वहां से चला गया। प्रियल पीछे पीछे आ गई और बाहर आ गई। बाहर अब कोई नहीं था, प्रभास दत्ता जा चुके थे। निक काफी दूर जा चुका था। प्रियल ने निक को दूर जाते हुए देख कहा, कभी तो इतने स्वीट और कभी कभी इतने रूड, क्या होगा इनका? आलिया उसकी इस बात को सुन लेती है। ये बात सुनने के बाद उसने दूर जाते निक को देखा, वो समझ गई थी माजरा क्या है। वो दूर से ही बोली, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, मोरा पिया मोरा पिया। प्रियल ने बिना आलिया की तरफ देखे कहा, हाँ मेरी सिचुएशन पर एकदम सही बैठ रहा है ये गाना। फिर वो घूमी तो उसे आलिया दिखी। तुम? आलिया को देखते ही प्रियल उसे पहचान गई। हाँ मैं, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई होगी, मगर नहीं है, क्या करूं, आलिया चीज ही ऐसी है। आलिया ये कहते कहते उसके पास आ गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो टेनिस सेंटर में होना चाहिए थी। हाँ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे स्पेशल मेडिकल कार्ड मिल गया है, जीन ने दिया है। मैं अपनी किसी भी चोट या इंजरी को दिखाने के लिए यहाँ आ सकती हूँ, तो बस वही दिखाने आई थी। हाथ में मसल्स पेन है, उसमें हल्का हल्का दर्द है, तो वो दिखाना था। ओ एक्चुअली सुनो ना, अचानक आलिया के तेवर बदले और वो काफी फ्रेंडली हो गई, मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मेरे इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने के नहीं थे, पता नहीं कैसे हो गया, मगर मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी, प्लीज 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 माफ कर दो ना। आलिया प्रियल के हाथ पकड़कर बच्चों की तरह कूदने लगी, अरे अरे हाँ ऐसे मत करो, कर दिया माफ। प्रियल को कुछ और नहीं सूझा तो उसने उसे ये कह दिया। आलिया काफी फ्रेंडली और पोलाइटली बिहेव कर रही थी तो उसे ईगो और एटीट्यूड दिखाना अच्छा नहीं लगा, उसने उसे माफ करना ही सही समझा। ओ यू आर ग्रेट, आलिया बोली और प्रियल के गले लग गई। तभी प्रियल को जीन का फोन आया। जीन ने फोन उठाया और फिर वहां से बात करते हुए निकल गई। जीन ने कल शाम के प्रोग्राम और निक की माँ की एनिवर्सरी के बारे में बताया, जिसके बाद प्रियल बोली, आपको क्या लगता है मुझे भी वहां आना चाहिए? जीन ने यह सुनते ही कहा, वहां पर मिस्टर दत्ता भी होंगे, तुम रहने देना यार, ऐसे रिस्क लेना सही नहीं रहेगा, तब तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, प्रियल ने सोचते हुए कहा। वो वैसे भी आज काफी परेशान लग रहे थे, मैं जाऊंगी तो उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। फिर उसे निक के मुंह से निकला एली का नाम याद आया। ये याद आते ही उसने जीन से पूछा, अच्छा जीन ये एली कौन है? ये सुनते ही जीन के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गईं। एली? वो क्या कहे, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। तुम निक से पूछ लेना, मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ये कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया।
अब इसे क्या हो गया, प्रियल ने कहा। वहीं जीन बोली, आज तो बहाना बनाकर मैंने कॉल कट कर दिया, पर एली की बात कभी न कभी तो सामने आएगी, पता नहीं सब कैसे एडजस्ट होगा, भगवान सब सही रखना, उसने प्रार्थना की। निक अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगा था। वो बार बार एली को अपनी आंखों के सामने याद कर रहा था। जैसे जैसे उसे एली याद आ रही थी वैसे वैसे वो अपने काम करने की स्पीड को बढ़ा रहा था। तभी जैन ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया और निक एली की यादों से बाहर निकल कर आया। जैन के देखते ही निक ने खुद को संभाला और खड़े होते हुए उसे बोला, जैन तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, क्या बात है, कौन सी दुनिया में रहने लगे हो आजकल? जैन निक के पास पहुंचा और उसे गले से लगाया, हाँ भाई आपने तो सॉरी बोलकर अपना काम निकाल लिया, अब मुझे भी तो आलिया के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो उसी चक्कर में फंसा पड़ा हूँ। अच्छा बताओ क्या बात है, मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ उसी लिए आया था, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए आपकी, बस मैंने प्लान बना दिया है, लेकिन आप ही बताइएगा ये सही है या गलत है।
निक हंसते हुए बोला, कोई असाइनमेंट थोड़ी ना है जो गलत होगा, प्लान ही तो है।
अच्छा बताओ, प्लान क्या है?
मैंने ना कंट्री साइड के पास में एक अच्छा सा पार्क देखा है, वहाँ का व्यू बहुत फेमस है, बहुत सुंदर जगह है वो। सोच रहा हूँ कल जाकर देखाऊं और फिर 2-3 दिन बाद आलिया को वहाँ पर ले जाकर प्रपोज कर दूं। फिर हाँ या ना बोलना उस पर है। बताइए कैसा प्लान है?
आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, पर तुम्हें नहीं लगता एक बार थोड़ा फ्रेंडली हो जाना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेंडली होने वाला तरीका आप फॉलो कीजिए, मैं डायरेक्ट प्रपोज मारूंगा।
निक फिर से हंसा। ठीक है, तुम ट्राई कर लेना।
निक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, पर अकेले मत जाना, किसी को साथ लेकर जाना, कहीं उसकी मार ही ना खा लो, उसका पता भी नहीं, वो तुम्हें पीट भी सकती है।
बस भाई, इतना भी बुरा मत सोचो मेरा, सब अच्छा ही होगा। मैं कल सुबह जा रहा हूँ, शाम तक मम्मा की प्रार्थना सभा तक आ जाऊंगा।
हाँ हाँ, आराम से जाना, ये भी कोई कहने की बात है?
हाँ। जैन ने अपने चेहरे पर खिसी हुई हंसी दिखाई, फिर दांत दिखाते हुए निक से पूछा, और भाई आपका कैसा चल रहा है, कोई नाइट?
निक ने उसे बीच में ही टोका, मारूंगा मैं तुझे, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं, वो भी नॉर्मल नॉर्मल दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होता। फिर उसने थप्पा दिखाया।
जैन भागने लगा। भागते हुए वो बोला, अरे भाई, कब तक दोस्त दोस्त बोलकर अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखोगे? प्रपोज कर दो, इसी में सबकी भलाई है।
निक ने उसके जाने के बाद अपनी गद्दी बिछाई, फिर वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा और जीन को फोन मिलाया।
जीन के फोन उठाते ही वो बोला, पता नहीं क्यों सबको लगता है कि मैं प्रियल से प्यार करता हूँ।
क्योंकि तुम्हारी आंखों में दिखता है, जीन ने सामने से हंसते हुए जवाब दिया।
अच्छा, तुम लोगों को बड़ी आंख पढ़नी आती है?
मैंने अभी अभी सीखा है, जीन मजाकिया अंदाज में बोली। फिर उसे अचानक प्रियल की कही गई बात याद आई और वो निक से बोली,
अच्छा, प्रियल मुझसे आली के बारे में पूछ रही थी अभी कुछ देर पहले।
हाँ, मेरे मुंह से उसके सामने आली का नाम निकल गया था, मुझसे भी पूछा, मैं बताना चाहता था उसे सब और बताना भी चाहता हूँ, पर कैसे बताऊँ ये कुछ समझ नहीं आ रहा है।
उसे बताना जरूरी थोड़ी ना है, जीन सोचते हुए बोली।
फिर वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड तो नहीं? जो नहीं बताओगे तो कुछ हो जाएगा?
ये सही है तुम लोगों का, गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है, ये बताओ ये मत बताओ। तुम लोगों को पता है ना, मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं चलता, मैं सब बात क्लियर करके रखता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कोई मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रखे, बस इसीलिए मैं उसे सब बताना चाहता हूँ।
अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता वो तुमसे कोई उम्मीद रख रही है?
उसकी आंखों से दिखता है।
और तुमने कब से आंख पढ़ना शुरू कर दी?
मजाक नहीं, निक अपनी कुर्सी पर सामने की तरफ हुआ और प्रियल को याद करते हुए बोला, सच में उसकी आंखों में दिखता है, उसकी आंख बता देती है उसके दिल में क्या चल रहा है। आज मैं जब उसके करीब था तो उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि पूछो ही मत, उसके दिल की धड़कन को कोई भी महसूस कर सकता था। उसके दिल की धड़कन को देखकर मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ गई है और मैं उससे दूर गया।
ओहो, क्या बात है मिस्टर, जीन सरप्राइज हुई। धड़कनें महसूस भी की जा रही हैं, बढ़ाई भी जा रही हैं, आंख भी पड़ी जा रही है, आखिर माजरा क्या है?
माजरा कुछ भी हो, सच यही है कि मैं अली के अलावा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता।
जीन चढ़ गई, उसे पसंद नहीं था निक एक ही बात की रट लगा कर रखे। वो चढ़े हुए अंदाज में बोली, क्यों नहीं दे सकते, क्या मजबूरी है? और मुझे पता है तुम जगह देना चाहते हो, बस ये बात तुमसे एक्सेप्ट नहीं हो रही, तुम डरते हो इस बात को एक्सेप्ट करने से।
हाँ, मुझे वो अच्छी लगती है, पर
प्यार?
हाँ, लेकिन प्यार मैं सिर्फ एली से ही करता हूँ, मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता।
मैं कैसे कर सकता हूँ किसी और से प्यार?
कमॉन यार निक, ये सुन सुन करना मेरे कान पक गए हैं, इसके अलावा कुछ नई बात कभी तुम्हारे मुंह से नहीं निकली। एक बार तुम खुद सोचना और खुद से पूछना, खुद से पूछना तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुम खुद समझ आ जाएगा तुम्हें क्या करना है। ये कहकर जीन ने फोन काट दिया।